ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन। आज प्रातः श्रीमद् भागवत में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम पांचवें स्कंद के दसवें अध्याय में सिंध सोवेर के महाराज रहुगण जड़ भरत के साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये इस अध्याय का शीर्ष है। आज हम 13वें श्लोक का पाठ करेंगे। ये श्लोक जड़ भरत महाराज के मुख से रहुगण महाराज के डांटने के जो शब्द हैं उनके उत्तर में जड़ भरत इस श्लोक को कह रहे हैं, और इस श्लोक के बाद जड़ भरत भी बोलना बंद कर देंगे और फिर जो प्रतिक्रिया महाराज रहुगण करेंगे वो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, क्योंकि वो क्रिया है इसलिए उसको बताने के लिए सुखदेव महाराज कहेंगे इसके उपरांत महाराज रहुगण ने क्या किया। तो ये जड़ भरत जो पहले महाराज भरत ऋषभदेव के पुत्र, वैदिक साहित्य में तीन भरत बहुत प्रसिद्ध हैं। एक ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत जिनके नाम से भारत वर्ष नाम इस अजनाब वर्ष का हुआ, दूसरे भरत भगवान श्री रामचंद्र के भ्राता, वो तो राम प्रेम के मूर्तिमान आचार्य हैं, और तीसरे भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं जिसके नाम से अर्जुन को भरतवंशी कहा जाता है, जो पांडवों के वंश का भरत है। तो ये महाराज भरत, ये तीन भरत बहुत प्रसिद्ध हैं वैदिक साहित्य में। तो महाराज भरत का उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में है कि भाव के स्तर के ऊपर थे, क्योंकि इनके अंदर विरक्ति थी। नवयुवक अवस्था में घर राज महल खजाना सब परित्याग करके गंडकी नदी के किनारे पे जाकर और पुलय आश्रम में तपस्या करने के लिए। तो विरक्ति, किसी चीज से विरक्त हो जाना, भगवान में आसक्त होता है तो संसार से विरक्ति होती है। तो ये मुख्य बात ये है, केवल विरक्ति जो होती है तो ज्ञान मार्ग की वो शुष्क होती है, खुश्क होती है, लेकिन जो विरक्ति विशेष भगवान में आसक्ति से होती है वो विरक्ति, भगवान में आसक्ति है इसलिए अपने आप संसार छूट गया, संसार को छूटने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। तो विरक्त उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में महाराज भरत का है। तो भाव भक्ति तो स्वाभाविक है, अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आती है। आसक्ति तक तो साधन भक्ति कहलाती है, श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक साधन भक्ति है। भाव भक्ति तो सबके हृदय में पहले से है और भगवान की स्वरूप शक्ति से ही उदय होती है। भाव भक्ति का उदय होना, भाव भक्ति सबके हृदय में है, उसका उदय होता है जब भगवान की स्वरूप शक्ति संवित और आह्लादिनी हृदय में प्रवेश करती है। वो कहां से आएगी? वो कोई भगवान का प्रेमी भक्त कृपा करके देगा तब, या स्वयं भगवान दे या भगवान को कोई भक्त दे, तब भाव का उदय होता है। लेकिन भाव भक्ति के स्तर के ऊपर भी थोड़े से अनर्थ या अपराध रह जाते हैं, उसका उदाहरण है महाराज भरत। कितनी बड़ी विरक्ति के बाद, भाव की भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी हिरण में आसक्त हो गए और 3 जन्म लेने पड़ गए, भरत, हिरण और फिर जड़ भरत। तो महाराज भरत के इस चरित्र में एक तो पुनर्जन्म होता है, यह सिद्धांत स्थापित होता है, दूसरा भक्ति नष्ट नहीं होती है। जो भक्ति भरत के समय में की थी वो हिरण के शरीर में भी उनको याद रही, और जड़ भरत के समय में वो तो जड़ व्रत रहने लगे क्योंकि संसार में लिप्त होना ही नहीं चाह। तो जड़ भरत किसी से बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन आज पहली बार महाराज रहुगण को उत्तर दिया है। आज तक कभी बोले नहीं थे, वो मूकवत रहते थे, लेकिन किसी स्नेह के भाजन, किसी प्रेम के कारण उनके हृदय में कुछ दया आई महाराज रहुगण के ऊपर कृपा करने के लिए। वो अभी तो बोले हैं, आगे चल के तो पूरा उपदेश देंगे। वो तो महाराज भरत का बहुत सुंदर उपदेश है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। ये महाराज भरत, जड़ भरत रहुगण जो पालकी के ऊपर बैठे हैं और ये नीचे पालकी को उठाते हुए चल रहे हैं, और उनके ताड़ना करने के ऊपर उत्तर देते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। उन मत मत जड़वत स्व संस्थानम संस्थान गतस्य मे वीर चिकित्सेन अर्थ कियान भवता शिक्षतेन स्तब्ध परमतस्य च पृष्ठपेश उन्मत्त मत्त जड़वत्त स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान भवता शिक्षतेन स्तबद्ध प्रमत्तस्य पृष्ठपेश उन्मत्त जड़वत स्वसंस्थां गतमे वीर्य चिकित्सेन अर्थ कियान भवता शिक्षतेना सबद्ध प्रमथस्य च प्रेष्टपेशः पहले तो इस शब्द को ध्यान दीजिए स्वसंस्था स्वसंस्थान स्वसंस्थान स्व मने मैं अपने संस्थान मतलब स्वरूप में स्थित हूं यहां लिखा है मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं संस्थान संस्थान मतलब मेरी स्थिति स्व अपने आप में है इसका मतलब आत्म साक्षात्कार किया हुआ पुरुष ऐसे प्रभुपाद सिचुएशन इन माय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं जड़ भद्र ऐसे कह रहे हैं कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं और आप कह रहे हैं उन्मत मत जड़वत उन्मत उन्मत का मतलब पागल उन्मत पागल मत मत वाला कैसे कोई नशा कर पी के मत वाला हो जाए यहां लिखा है ड्रंक का वो नशा पिया हुआ यहां शब्द शब्द अर्थ में शीला पाओ तो मत का लिखा है ड्रंकार्ड उन्मत पागल और मत वाला नशा पिया हुआ आप मुझे कह रहे हैं कि पागल हूं लेकिन मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं गतस्य में वीर चिकित्सन वीर राजा को संबोधन कर रहे हैं हे महाराज आप राजा हैं शक्तिशाली हैं कुछ भी कह सकते हैं आप जो कह रहे हैं मेरी चिकित्सा करेंगे राजा ने ये कहा ना मैं तो आपको ठीक कर दूंगा तो आप मेरी चिकित्सा करेंगे चिकित्सा तो सबको मालूम है किसको कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा आपको आप मुझे जो दंड देने की बात कर रहे हैं इससे अर्थ इससे लाभ क्या होगा कियान क्या लाभ होगा भवता आपको इससे आपको क्या लाभ होगा क्यों लाभ क्यों नहीं होगा तेरे को सीधा कर दूंगा शिक्षा देना आपकी शिक्षा से आप जो मुझे दंड देंगे शिक्षा देंगे उससे लाभ होगा ही नहीं बोला क्यों नहीं होगा तो पृष्ठपेश जो पीसा है उसको पीसने से क्या होगा जो कूटा है उसको कूटने से क्या होगा भाई जो पहले से पागल है उसको आप और कूटेंगे तो और पागल होगा उससे ज्यादा और क्या होगा जो पीसे को पीसने से क्या होगा पृष्ठपेश का मतलब पीसे को पीसना उससे क्या होगा बोला क्यों स्तबध परमतस्य स्तबध अंग्रेजी में लिखा है डल और स्तबध यहां श्रील प्रभुपाद जी शब्द अर्थ में लिखते हैं जड़ परमतस्य पागल मनुष्य का तो भाव इस श्लोक में क्या है कि आदमी की बीमारी उसकी की जाए जो बीमार हो बीमारी है संसार में भौतिक रोग माया का वो तो मुझे है नहीं मैं तो पहले ही मेरे स्वरूप में हूं अब आप मेरा क्या इलाज करेंगे बोलिए भाई इलाज तो उसका किया जाए जो संसार में माया के प्रभाव में नहीं हो तो माया का पर्दा चाक करके उसको अपने स्वरूप में स्थित किया जाए यही तो इलाज है अब मैं तो पहले ही उसमें स्थित हूं तो अब मेरा आप इलाज क्या करेंगे आगे वाले श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे कि ये राज ऋषि ये जो राहु गण है राज ऋषि श्रेणी का राजा है और राज ऋषियों को महात्माओं के वचनों का अर्थ समझ में आ जाता था इसलिए इस भाव को सुनकर महाराज रहुगण अपनी पालकी से नीचे कूदे और कूद के अपना सर जड़ भर्त के चरणों में रख के और अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगे। तो ये इसका मतलब, इस श्लोक में कुछ ऐसी बातें हैं जो महाराज रहुगण उनकी आध्यात्मिक साक्षात किए हुए स्वरूप को समझ सके। तो इसलिए दो श्लोकों के बाद महाराज रहुगुण के लिए के संबंध में ऐसे लिखेंगे जैसे राजा महर्षि राज ऋषि हुआ करते थे, जिनको शास्त्र ज्ञान है, नाम भी लिखे हैं कुछ आगे प्रभुपाद जी ने कि ऐसे राजा। तो ये महाराज रहुगण को एक दृष्टि से उठाने वाला पालकी कहार बहुत बड़ा महात्मा है, उनके शब्दों से पता लगा है। इसलिए एक प्रभुपाद जी कहते थे किसी मूर्ख को भी ऊपर बिठा सकते, जब बोलता है तब पता लगता है। कोई पागल भी लगता हो लेकिन जब वो सत बोलता है तो लगता है ये पागल दिखाई में पड़ रहा है लेकिन पागल है नहीं। तो यहां इस श्लोक का अब श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। हे राजन, ये तो वीर जा शब्द है, आपने कहा हे दुष्ट जड़ तथा पागल, आपने मुझे जड़ और पागल कहा, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूं और तब तुम होश में आ जाओगे। ये जनभर्त कह रहे महाराज आपने ऐसे कहा, इस संबंध में मुझे कहना है कि यद्यपि मैं जड़ गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूं किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूं। अब ये ऐसे सामान्य शब्द में तो नहीं आता है लेकिन प्रभुपाद ने अनुवाद किया, मैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूं, स्वसंस्थान अपनी स्थिति में स्थित हूं। कोई व्यक्ति अपनी स्थिति, स्व मतलब अपनी, संस्थान अपिचेत से दुराचारो भजते महामनिवक साधु एव से मंतव्य, फिर क्या है, सम्यक व्यवस्थित। ये स्व संस्थान का मतलब सम्यक, ठीक जगह, सही स्थान पे। सही स्थान वो किसमें कि भगवान की भक्ति में स्थित है, ये अपने स्वरूप में स्थित है और स्वरूप ये है कि भगवान का मैं सेवक हूं। तो मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं, आप कह रहे हैं मैं पागल हूं, आप मेरी चिकित्सा करेंगे, तो मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे, अर्थ कैम अर्थ केन क्या मिलेगा आपको, भावताम आपको क्या मिलेगा। यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूं तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। प्रभुपाद ने अंग्रेजी में लिखा है बीटिंग, क्या लिखा है अंग्रेजी में, किलिंग ए बीटिंग डेड हार्स। अभी कभी आपको बताया था, एक आदमी को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए जा रहे थे, बेचारा डरपोक था, तो उसको ले गए कि पहले इसकी आंखें चकास करेंगे। तो उसको कहा देखो सामने क्या लिखा है, बोला कहां, बोला दीवार पे, बोला दीवार कहां है। वो इतना अंधा था, वो पागल इतना, मतलब वो इतना डर गया कि उसको दीवार भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसको कहा कि इसको तो भर्ती तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जरूरत है बहुत इस वक्त। तो अचानक तो रात को स्वप्न में देखता है कि मैं लड़ाई के मैदान में हूं, और सुबह उसको जेल ले जा रहे थे, बोला मैं रात बहुत लड़ाई किया, बोला क्या किया, बोला दुश्मन का तलवार से एक हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ काट दिया, एक झटके से एक पांव काट दिया, बोला कब, बोला स्वप्ने में, बोला गर्दन के ऊपर तलवार क्यों नहीं मारी, बोला वो तो पहले कटा हुआ था। गर्दन तो पहले ही कटा हुआ था, मतलब मरा हुआ था, उसको मैं स्वप्न में तलवार हला मार मार के मार रहा था। तो मरे हुए को मार रहा था, तो इसमें कौन सा तुमने बड़ा कमाल कर दिया। तो ये ऐसी स्थिति है कि आप मुझे क्या चिकित्सा करेंगे, जो आप करने जा रहे हैं, जाए आप जा रहे हैं गंगा सागर में अपनी चिकित्सा कराने मेरी तो पहले से हो चुकी है तो मरे हुए को मारने से क्या मिलेगा? तो मरे हुए को मारने के बराबर है आपका, मैं तो अगर आप मुझे पागल ही मानते हैं, जड़ जैसा ही मानते हैं, तो आपका ये मुझे मारना, तो आपका ये दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने के जैसा होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। फिर जब पागल को दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। और फिर उदाहरण दिया है, वो अनुवाद में प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा नहीं है, पृष्ठ पीछम का अनुवाद में ये शब्द नहीं है, नहीं है। वो ये अनुवाद में इस शब्द का अर्थ क्या लिखा है, मरे को मारना, मरे हुए घोड़े को मारना, ये पृष्ठ पेश का अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है। जैसे इसको क्या कहते हैं, एक लिखने का ढंग होता है ना, मरे हुए घोड़े को मारना का मतलब है पीसे को पीसना, उसमें कुछ निकलना तो है नहीं अभी, तो ये पीसे को पीसने के बराबर है। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अवस्था में अर्जित झूठे विशेष प्रभावों के अंतर्गत पागल से के समान आचरण करता है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्या है, हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में पागल जैसे व्यवहार करता है। क्या हम पागल हैं? हाँ, क्या हमारा व्यवहार पागल जैसा है क्या? एक जगह श्रील प्रभुपाद जी पागल की परिभाषा लिखते हैं कि सबको मालूम है कि दादा मर गया, सबको मालूम है कि दादी मर गई, नाना मर गया, नानी मर गई, इसके बाद पिताजी भी चले जाएंगे, इसके बाद मैं जाऊंगा, लेकिन वो समझता है कि नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये एक बड़े से बड़ा पागलपन है, एक बड़े से पागलपन बड़ा दुनिया का ये है कि इस दुनिया में सभी जा रहे हैं और जो बचे हुए वो समझते हैं हम कभी नहीं जाएंगे। और इससे भी बड़ा पागलपन ये है कि जब जाना है ये समझ में आता है तो उसकी तैयारी कोई नहीं करता, ये उससे बड़ा पागलपन है। जब जाना है कहीं तो उसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो जाने की जो तैयारी नहीं करता है वो उससे भी बड़ा पागल है। तो तैयारी क्या करनी चाहिए? ये जो हमारा सुमरण है, ये हमारा साधन है, ये जाने की तैयारी, ये तैयारी जो नहीं करता है वो उससे भी पागल है। और सारी दुनिया सब कुछ इकट्ठा करने में लगी हुई है जबकि ये भी मालूम है कि ये शरीर भी साथ ले नहीं जा सकते, ये दूसरा पागलपन है। तो यहां लिखा है कुछ ऐसी मान्यताएं हमने बना के रखी हैं इस दुनिया में भौतिकता के कारण, इसलिए हम पागल जैसा। हम पागल कैसे हैं हमने आपको बताया, किसने हमको पागल किया है? माया ने। तो माया कैसे पागल करती है संसार में, भौतिक जगत में माया के संसार में आदमी कैसे पागल होता है? तो माया के काम क्या है? दो काम है मुख्य माया के, क्या? आवरणात्मक और विक्षेप। आवरणात्मक का मतलब है जो असली चीज है उसको ढक देती है, हमारे स्वरूप को, हमारे को भुला देती है और भगवत स्वरूप को जानने से हमको बेमुख कर देती है, ये हो गया आवरणात्मक। और विक्षेप का मतलब जो नहीं है उसको असली समझने के लिए हमारे को प्रेरित करती है। इसका हमने एक दिन आपको उदाहरण दिया था, याद है? सिनेमा देखने जाना, याद है? जब सिनेमा देखने जाते हैं तो अपने सगे संबंधी मित्रों के साथ जाते हैं और जाके अंदर बैठते हैं पैसा टिकट लेके, और सिनेमा शुरू करने से पहले काम क्या करते हैं? लाइट बंद, क्या करते हैं? अंधेरा करते हैं ना। अब जिसके साथ गए थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, जिसके लिए खर्चा किया, टिकट भरा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, पास में बैठा हुआ है। और ये हो गया आवरण आत्मिक। और फिर बड़े पर्दे के ऊपर विक्षेप चालू करेंगे, वो एक सिनेमा चालू होती है और हम थोड़ी देर के लिए उस सिनेमा को सच समझने बैठ जाते हैं, और उसमें जो भी अभिनेता अभिनेत्री नेत्र कर रही है वो हम समझते हैं ये उसके साथ इतना तदात्म्य कर लेते हैं, अगर उसको तकलीफ आती है तो हम उधर बैठे रोते हैं, और उसको परेशानी हो गई तो हम परेशान हो जाते हैं, और उधर तो ऐसे बिल्कुल उसमें हम उसके साथ तदात्म्य करके बैठते और जिससे आए हैं उनको भूल जाते हैं। तो ये पागलपन है कि नहीं है कि उनके लिए रो रहे हैं जो पैसे कमा रहे हैं और हम पैसे खर्च करके रो रहे हैं, पैसे खर्च करके जाके रो रहे हैं और जिनके लिए रो रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं। और इस दुनिया में भी हमारा ये हाल है कि हम अपनी आत्मा के हित तो कोई कार्य करते नहीं है, शरीर के लिए सारे कर रहे हैं कार्य, सारा काम का शरीर के लिए कर रहे हैं जो एक दिन कभी रह नहीं सकता है, और जो आत्मा नित्य है उसके लिए तो काम करने के लिए समय है नहीं। तो माया ने इसको कहते हैं पागलपन, इसको थोड़ी देर के लिए आदमी सचपच पागल हो जाता है, उसको उससे तदात्म्य कर लेता है विक्षेप के साथ, उस फिल्म के साथ अपने आप को अभिनेता के साथ जोड़ लेता है। ऐसे हमने भी अपने आप को शरीर के साथ ऐसा जोड़ रखा है और शरीर की मान्यताएं ऐसी मान रखी है जो असल में बड़े से बड़ा पागलपन है। पिछला प्रभुपाद के शब्दों में असल में इसकी चिकित्सा की जरूरत है, ये बड़े से बड़ा पागलपन है। ये कितना सत्य है, और इसको मानने के बाद भी कोई इसके लिए कुछ नहीं करे तो उसको ही तो मूर्ख कहा जाएगा, समझाने के बाद भी नहीं समझे उसको क्या कहेंगे, पागल है यही कहेंगे ना, इतना समझाया फिर भी नहीं समझ रहा है तो पागल हो गया। तो यहां ये शब्द है कि सभी संसार में पागल है। उदाहरणार्थ प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं, चोर है उसको मालूम है चोरी करने से दंड मिलेगा, जेल में जाना पड़ेगा, पकड़ा गया तो मारेंगे, लेकिन फिर भी लोग चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मालूम है फिर भी कर रहे हैं ना, इसका मतलब पागल है कि नहीं है। आदमी को पता है कि ये गलत काम है फिर भी आदमी गलत काम कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। एक पागल एक आदमी है नहीं जाने करे, लेकिन ये तो समझदार है, समझ से जान रहा है फिर भी पागलपन का काम कर रहा है। तो प्रभुपाद जी यहां उदाहरण देते हैं कि उदाहरण अर्थ चोर ये जानता है कि चोरी अच्छा काम नहीं है, और ये कि इसके बाद राजा या ईश्वर से दंड मिलता है, तथा चोर पकड़े जाते हैं और पुलिस उन्हें दंड देती है तो भी वो बारंबार चोरी करता है। इसके मन में ये विचार घर किया रहता है कि चोरी करने से वो सुखी हो जाएगा। इस चोरी को ऐसी चोरी मत समझिए कि किसी के घर में जाके सामान उठा के आना है। हम धंधे व्यापार में इतनी चोरी करते हैं और बड़ी सावधानी से चोरी करते हैं, मालूम है कि दो पैसे का जहां फायदा है वहां धर्म अर्थ सब एक तरफ रख देते हैं, सब शिक्षाएं एक तरफ कर देते हैं, और फायदा जहां होता है वहां आके बंद करके ले लेते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की चोरी है। एक बार हमको किसी के घर में गए तो मैंने पूछा काम क्या करते हो, बोला मलेरिया में मच्छरों को, मैंने मलेरिया डिपार्टमेंट में हूं और मच्छरों को मारते हैं कि लोगों को मलेरिया न, मेरा मच्छर खत्म हो गए, बोले नहीं हो रहे। कितना बड़ा खर्चा होता है मच्छर मारने के लिए, मच्छर खत्म क्यों नहीं होते, बहुत बड़ी समस्या है। उसने बोला नहीं खत्म हो रहे, बड़ा प्रयास कर रहे हैं खत्म नहीं हो रहे, मतलब क्यों नहीं हो रहे, दवाइयां भी नहीं है, प्रयास भी बहुत करते हैं, गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, बड़ा डिपार्टमेंट है। तो हमने कहा भाई देखो मच्छर बनते कैसे हैं, उसका अगर इलाज नहीं किया जाएगा तो फिर आपका सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। बोला कैसे, मच्छर कैसे बनते हैं, मेरा जो खून चूसते हैं लोगों का, ये बेईमान चोर व्यापारी ये मरते हैं तब मच्छर बनते हैं, तुमको इलाज इनका करना चाहिए इलाज तुमको इनका करना चाहिए, तुम बेचारे मच्छर को क्या करोगे मार के, जो मच्छर बनता है जहां से वो रास्ता बंद करो ना, तो वो जहां से बनने की जगह है। तो हमने इसको ये उत्तर तो ऐसे दे दिया उसको, मैंने सोचा ऐसा तो मैं मनमानी तो नहीं किया है ऐसे में, तो फिर मैं पढ़ रहा था तो श्रील प्रभुपाद जी के बॉम्बे के केस में इतमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कोर्ट में जाया करते थे, तो कोर्ट में तो बैठना पड़ता है बहुत देर, जब बारी आए तब तो कोर्ट की बेंच के ऊपर बैठते थे, और उनके अंदर बहुत बड़े बड़े खटमल थे। वो जाके महाराज, एक तो महाराज गोरे और गोरी चमड़ी और इतने इतने लाल दबे हो जाए। एक दिन कहते हैं प्रभुपाद जी, ये देखो वहां बेंच के ऊपर बैठना पड़ता है, ये बड़े खटमल खा जाते हैं बक्स। प्रभुपाद ने कहा कोर्ट की बेंच पे कभी नहीं बैठना, ये सारे वकील मर के यही बनते हैं खून। ये सारे वकील ये जीते जी खून पीते हैं और मरने के बाद यही खटमल बनते हैं, कोर्ट की बेंच के ऊपर ही ये बैठते हैं। तो हमने कहा जो कहा था हमने, चलो ठीक है, उसके लिए कोई उदाहरण ठीक मिल गया है। हर एक अंदर में झांक के देखे कि हमने भी बचपन से लेके अभी तक बहुत सी चोरियां की, छोटी मोटी नहीं तो प्रसाद की चोरियां तो सभी करे, सबने की है इधर उधर से। इसमें तो कोई बचा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं कहीं से कोई चीज इधर की उधर, नहीं तो पुस्तक की चोरी, ये तो साधु संतों में भी मिलती है, देखी देखा ही मिलती है। भूल गया तो भाई क्या करेगा उसको, भूल भी जाता है देखे तो। ये बहुत जाने अनजाने में बहुत कुछ हो जाता है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन कभी वैसे ऐसे अवलोकन करना पड़ेगा, कहा कि जान के क्या हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जान के बहुत सी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक सेठ के दुकान पे एक बहुत बड़ा रईस आदमी आया, सर्दियां हैं, बहुत बड़ा कंबल चाहिए, तो अंदर से बोला कंबल लेके आ बेटा, हरा वाला कंबल। बोला कितने के है? 2000 का। बोला देखते नहीं हो इतना बड़ा आदमी हो, हमारे लिए 2000 का कंबल लाए हो? वो बड़ा रईस मुसलमान था, जमींदार था, बड़ा ऊंचा कंबल दो। सेठ ने कहा धंधा तो करना है, अब ये मूर्ख है, लेकिन मैं तो धंधा करने के लिए बैठा हूं, तो ग्राहक को जाने नहीं देना चाहिए। लड़के को देखो अंदर कमरे में, वो अंदर अपने स्टोर में जो ब्लू कंबल के पास में जो एक और हरा कंबल पड़ा है वो लेके आओ। वो लेके आया, बोला ये कितने का? बोला 5000 का। बोला हाँ ये ठीक है, अरे तू सेठ ज्यादा तो नहीं ले रहा है? बोला ज्यादा खाए गऊ खाए। अब ये तो भाई हिंदू है, कहता है ज्यादा खाए गऊ खाए, गाय खाए, तो सब तो ले लिया। उसने तो पैसा दिया, वो चला गया। काम करने वाले ने कहा सेठ जी वही कंबल था जो 2 वाला था, सिर्फ नाम आपने कहा उधर से लाओ, अब 2000 के 5000 ले लिए, और आपने शब्द भी खा लिया कि ज्यादा खाए गऊ खाए। बोला बेटा देखो धंधा तो करना है। अब वो तो मूर्ख था, अब 2000 रुपया अपने गले में रखो, 3000 गौशाला में दे किया, भाई ज्यादा ले गऊ खाए, मैं थोड़ी खा रहा हूं। जो ज्यादा लिया है वो गऊ खा रही है, मैं थोड़ी खाऊंगा, जाओ गौशाला में जमा करा किया। अब ये कम से कम उसकी चेतना ठीक थी, सोच समझ के कहा कि ये मूर्ख है, इसका पैसा गौशा में लगा तो इसको भी भला होगा, मेरा धंधा तो होगा, ये चोर नहीं हुआ। जान मतलब ऐसे हम भी सब ज्यादा लेते हैं गौशाला में दें तो हमारी गौशाला अच्छी चलेगी, लोगों को बोल दो जो ज्यादा एक्स्ट्रा जो भी लिया है गऊ खाए। बहुत आसान सा तरीका है, लोगों को ये एक बुद्धि आ जाए भी, क्योंकि हर धंधे के अंदर थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ता, नहीं तो धंधा चलेगा नहीं, लेकिन उस झूठ को सही जगह पे सेवा में लग जाए तो जान छूट जाए, क्योंकि बगैर झूठ के काम तो कोई नहीं होता है, जाने अनजाने में कुछ करना पड़ता है। ये भगवद गीता के श्लोक में 18वें अध्याय में लिखा है कि हर काम में कुछ दोष होता है, जैसे अग्नि में धुआं होता है तो धुएं के कारण कोई काम नहीं छोड़ता है, रोटी पकानी है तो धुआं आंखों में पड़ेगा, लेकिन रोटी तो चाहिए ही, तो धंधा तो करना है तो उसमें कुछ ना कुछ झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो उस झूठ का कहीं अच्छी जगह पे लग जाए तो अपने आप डूबने से बच जाए। चोरी करना बुरा है ये तो है, एक श्रीपद रामानुज आचार्य की जीवनी के एक बार कहने के लिए किताब पढ़ रहा था, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगम, सात दीवारों में बना हुआ, जैसे वैकुंठ के सात दरवाजे हैं। इस मंदिर को बनाने वाले का नाम लिखा है, वो पहले लोगों से जाके कहा भाई दान दो, मंदिर बनाने में कोई दे नहीं रहा था। फिर वो बना चोर और चोरों की एक बहुत बड़ी पार्टी बनाई और लोगों को लूटता था, पैसा लाके मंदिर बनाता था। पूरा मंदिर कितना साल लिखा है कि एक दीवार 12 साल में, दूसरी दीवार 15 साल में, ऐसे करके कोई 45-60 साल में पूरा मंदिर चोरी करके बनाया है। तो एक चोरी करना बुरा है, लेकिन यहां ये चोरी करना, ये रंग श्रीरंग मंदिर बनाया उस चोरी से। तो वो चोर का नाम उन भक्तों की लिस्ट में है जिसने ये मंदिर बनाया। उसने कहा ये है चोर, ये सीधा सीधी उंगली से तो घी निकलता नहीं है, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, मांगने से देते नहीं है, तो अभी इसको डंडा मार के लेना पड़ेगा। और उन सबका माल ले आके मंदिर बनाया। तो ये चोरी करना बुरा है, ये तो ठीक है, लेकिन सारे ही चोरी कर रहे हैं, सारे ही चोरी कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो इसलिए किससे कैसे इस चोरी से बचें, ये भी साधना आना चाहिए। तो यहां श्री प्रभुपाद जी का यहां तात्पर्य में, उसके मन में ये विचार घर किए रहता है कि चोरी करने से वो सुखी हो जाएगा, या चोरी करने से सुखी हो जाएगा, या कोई भी कार्य करने से कोई वो समझेगा मैं दुनिया में सुखी हो जाऊंगा। ये असल में बड़े से बड़ी बीमारी है। मैं सुखी हो जाऊंगा इस दुनिया में, ये सोचना सबसे बड़ी बीमारी। क्योंकि बनाने वाले दुनिया ने कहा है कि ये दुनिया दुखालयम है, तो इसमें हम सुखी कैसे हो जाएंगे? जहां हम आए हैं वहां सुख है, नहीं तो सुखालय होगा कैसे? अब हम समझते हैं कि ऐसे करने से सुखी हो जाएंगे कि ऐसे करने से सुखी हो जाएंगे, लेकिन यहां सुख है नहीं तो सुखी होंगे कैसे? तो सुखी होने के लिए प्रयास करना भी पागलपन है, यह भी पागलपन है, यह भी मरे को मारने के बराबर है। जब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? इस दुनिया के सुख की परिभाषा क्या है? जो दुख आ रहा है उसको कम करते हो उसका नाम सुख है। इस दुनिया का सुख दुख को कम करने को ही कहते हैं। भूख लगी है, बहुत पीड़ा हो रही है, रोटी मिल गई, ओ बड़ा अच्छा है, सुखी हो गए। तो दुख, सर्दी बहुत लग रही है, एक कोट कंबल जर्सी मिल गया, खुश हो गया। तो दुख, इस दुनिया में दुख को कम करने का नाम ही सुख है। असली सुख जो है वो कहां है, कैसे सुखी हो जाएंगे? ये भगवत गीता का श्लोक आज याद करके जाइए सुखी होने का, 5वें अध्याय का श्लोक है, मेरे ख्याल में 22वां श्लोक होगा। शक्नोति षोडुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम संयुक्त ससुखी नरः। असली सुखी होने का साधन यह है, शक्नोति कर सकता है, षोडुं बर्दाश्त, सहन शक्ति जिसमें है। शक्नोति षोडुं प्राक शरीर विमोक्षणात्, कब तक सहन करेगा? जब तक जिएगा, जब तक ये प्रकृति का दिया हुआ शरीर समाप्त नहीं हुआ है, तब तक जिसमें सहन करने की शक्ति है। क्या? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होते हैं, जो हमको गलत काम कराते हैं, पाप कराते हैं, जो हमारे को इन संसार में बंधन में डालते हैं, वो कब तक रहेंगे? बोला जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे इसको कैसे कर सकते हैं? सयुक्त वही कर सकता है जो भगवान से अपने आप को जोड़ के रखेगा। अपने आप हम ऐसे नहीं कर सकते, इतनी सहने की शक्ति भी हमारे अंदर अपने आप नहीं आ सकती, इतना सहनशीलता अपने आप नहीं आ सकती है। लेकिन अगर भगवान का हाथ थाम लेंगे, चरण पकड़ लेंगे, सयुक्त जो भगवान से जुड़ गया है, भगवान से जुड़ते कैसे हैं? सेवा से। भगवान से जुड़ना है सेवा से, और भगवान की सेवा कौन करेगा? जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम प्रकट होगा। जब तक प्रेम नहीं है तब तक सेवा दिखावा है। प्रायः प्रेम के बगैर सेवा होती नहीं है, असली सेवा होती है प्रेम से, नहीं तो सेवा होती है किसी लाभ के लिए। सेवा लाभ के लिए सब करते हैं, लेकिन प्रेम के कारण सेवा एक मां करती है दुनिया में। बाला बच्चे से प्रेम है इसलिए दुख देखने को तैयार होती है, रात को जागने को तैयार होती है, कुछ मांग मिलता नहीं है। तो ए प्रेम नहीं होगा तब तक सेवा नहीं होगा, सेवा नहीं होगा तब तक भगवान से जुड़ेगा नहीं, और जब तक भगवान से जुड़ेगा नहीं तब तक सहने की शक्ति आएगी नहीं, और जब तक सहने की शक्ति नहीं आएगी तब तक सुखी नहीं हो सकता। एक ये सुख का साधन है भगवद गीता में 22वें श्लोक में 5 के और 1-2 के 23 में, 23 है ना, हाँ। तो दूसरा है दूसरे अध्याय के 64 है या 65 है, अयुक्तस्य कुतः सुखम, कौन सा श्लोक है ये, नासते विद्यते भावो न विद्य, नासते विद्यते भावो न भाव, न अभावो विद्यते सतः, फिर नहीं ये लिए नहीं है, 2 का 65 या 66 64 65 66 तीनों में से एक होगा, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भाव्यंत अशांति अशांतस्य कुतः सुखम। 65 है, 66 है। जो यहां भी युक्तस्य है, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसके अंदर शांति कहां से आएगी, शांति नहीं आएगी तो सुख कहां से आएगा, उसकी भावना उसका मन एकाग्र नहीं होगा तो सुख आएगा कहां से। तो सुख का साधन है भगवान से जुड़ना, सुख संसार के चीजों में नहीं है, सुख है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने में। तो चोर समझता है कि चोरी करने से सुखी हो जाऊंगा, और हम समझते हैं कुछ कमाने से सुखी हो जाएंगे, ये सुखी होने का असली साधन नहीं है। ये तो पागलपन का लक्षण है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये पागलपन का लक्षण है, इस दुनिया में हम सुखी हो जाएंगे। बारंबार दंडित होकर भी चोर अपनी चोरी करने की आदत नहीं छोड़ जा पाता, अत दंड वृथा है, उसको दंड देने का लाभ क्या है, वो चोरी चोर करने की आदत नहीं छोड़ता है। हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आने से नहीं बचते जब तक भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करते। तो इसलिए युक्त होना, भगवान से जुड़ना और सेवा में जुड़ना, और सेवा प्रेम से होती है, और प्रेम भगवान ने सबके हृदय में पहले से डाल के भेज दिया। कोई ऐसा नहीं है गरीब इस दुनिया में, सबके हृदय में भगवान ने प्रेम की पोटली तैयार करके रख दी है। सबके हृदय में लाल पड़ा है भगवान के प्रेम का, जगमगाता हुआ हीरा पड़ा है, और ये मूर्ख बाहर ढूंढ रहा है। आपको कभी एक बार हमने बताया था, एक आदमी के बच्चे ने सिक्का निगल लिया था, बताई थी कथा ये, और रुपये का सिक्का निगल लिया बच्चे ने, बाप बड़ा परेशान हुआ, उठा के बच्चे को बाहर रोड पे खड़ा हो गया, भाई डाक कोई गाड़ी रोको अस्पताल ले चलना है। तो एक गाड़ी बड़ी रुकी, आके बोला क्या बात है, बोला बच्चे ने पैसा निकल लिया है। उसने बोला बच्चा यहां लाओ, और बच्चे को उठाया ऐसे ऐसे उल्टा पांव से उठा के गर्दन के पीछे मुक्का मारा, रुपया बाहर निकल आया। उसने बोला अच्छे बड़े डॉक्टर हो, अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा, हमारी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। आप कौन से डॉक्टर, बोला डॉक्टर नहीं हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, पैसा कहीं भी छुपा हो निकाल सकता हूं, कहीं भी पैसा हो पेट में हो तो भी निकाल सकता हूं। तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे, सुख तुम्हारे अंदर में है, हमको उसको निकालना आता है, तुम को बाहर ढूंढ रहे हो, इसमें नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर सुख है, सुख का स्रोत तुम्हारे अंदर है, इसको निकालना साधु संतों को आता है। तो वो भगवान से संबंध स्थापित करते हैं तो आप अपने आप सुखी हो जाते हैं। तो ये प्रेम तो भगवान ने जन्म सिद्ध सबके हृदय में भर के भेजा है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नहीं। अब इसको कैसे प्रकट किया जाए, ये रुपया अंदर से निकाला कैसे जाए, सर्वानादि शुद्ध चित्ते करे उदय, ये भगवत कथा सुनना, भगवत कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, इससे ये सुख का जो कृष्ण प्रेम धन है ये जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और ये कैसे होगा ये पूरे इस रहुगण महाराज जड़ भरत के उपदेश में एक ही श्लोक का एक ही अक्षर आएगा, महत पद रज अभिषेकम। ये सब तब हो सकता है जब किसी महात्मा के चरणों की रज का अभिषेक का मतलब उसके पीछे चलेंगे, जब अनुगत होंगे किसी साधु संत के, किसी वैष्णव के अनुगत होंगे तब ये होगा। कौन सा श्लोक है कि वृंदावन चंद्र प्रभु, ये जो मुख्य श्लोक सबसे आखिर में, ये भवाटी से कैसे जाएंगे तो वहां महात्माओं के चरण की रज अभिषेक कैसे, ऐसे कुछ एक श्लोक है आ रहा है श्लोक ऐसे जबान पे, रहुगुण न तपसा न जब, हाँ ये सब न तपस्या से न दान से न इज्जा महत्पद रज अभिषेकम, ऐसे कुछ शब्द है। पर ये सारा, ये सारांश है पूरे रहुगुण के उपदेश का, ये सारे जड़ भरत के उपदेश का जो सारांश है वो ये है, जब तक साधु महात्मा संत भगवान के प्यारे वैष्णव भक्तों की कृपा न हो तब तक भगवत प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होंगे, तब तक सुखी नहीं हो सकते। बाहर के सुख के सारे साधन कभी किसी को सुख दिया नहीं है, दे सकते नहीं है, उनके पास सुख है ही नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौर प्रेमानंदे।